मैंने एक एक चीज़ लिखी थी एक लाइन के कि एक सच है जो लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं, कि ये सफ़र तो मौत का है, ज़िंदगी से तो बस गुजर कर जाना है। मतलब जाकिर भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे कामयाब ना हो, माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते, तो वो बात सच है। बॉस ईगोइस्टिक होते हैं, लीडर ईगोइस्टिक नहीं होते। ओ यू गॉट 52% BSc कर लोगे? मेरा दिल के जूते। ये कैमरे का क्या करना?
हाँ कैमरे का आप कर देना।
अच्छा
स्टार्ट सर। ओके लाइट्स कैमरा एक्शन। थैंक यू सो मच भैया। स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और एक स्टोरी बता रहा
हूँ। अच्छा
पहला सवाल ये है कि आप हमेशा आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे इंटरव्यू करा होगा, आज पहली बार उस सीट पे बैठना है जहाँ पे आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू नहीं मतलब पॉडकास्ट लिया जा रहा है, कैसे लग रहा है आपको?
यार मेरे को अच्छा लग रहा है, और ऊपर से ना एक ना हम जो लोग इंटरव्यू करते हैं है ना, तो हम लोगों में ना एक फील होती है कि हम ऑलवेज ना ऐसे रहते हैं ऑन द टोज है ना। आज मैं ऑन द टोज नहीं हूँ,
आज
मैं रिलैक्स हूँ है ना, कि यार जो मर्जी पूछ, बोलना तो झूठी है। मतलब कि आज ऑन द टोज नहीं हूँ मैं, ठीक है। इंग्लिश में फंबल बज रहे हैं। पहले तो इन्होंने जो नाम लिखा है इन्होंने एक्टोफिलिया, इतना महंगा गाड़ी ग्रेवी वाला नाम रखा है। हम जैसे गरीब लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती उनका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा हमारा तो नहीं। यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा।
माय प्लेजर। और स्टोरी है वैसे आपको आपके साथ जो पॉडकास्ट करके ना मुझे भी वो टोज ऑन द टोज वाली फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही ऐसे बड़े भाई के साथ बैठे हो, गप्पे शप्पे मार रहे हो, वो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। ओके तो क्या हुआ था, मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम काम पे देखा था, तो मैं आई गेस +1 या +2 में था।
अच्छा
हाँ, तो आप किसी इवेंट के लिए MyFM के लिए आप इवेंट के लिए आए थे हमारे स्कूल में।
ओके okay.
और हमारा ना एग्जाम खत्म हुआ था, कोई घटिया सा एग्जाम था साइंस का।
सारे घटिया होते हैं।
तो हम करके खत्म हुए हैं और फिर आप एंटर हुए हमारी क्लास में।
ओके okay.
तो आपने आते ही बहुत ही ऐसे एनर्जी के साथ ना सभी को गुड मॉर्निंग बोला, बहुत ही एंगेजिंग वे से ना सबको चीजें स्टोरीज वगैरह बता रहे थे। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे मैं आपको देख रहा था, तो मेरे को ना ऐसे फैन बॉय वाला मूवमेंट हो रहा था कि यार मैं ना बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही शाय किस्म का था, ठीक है, तभी आप मेरे को याद नहीं रखा होगा। तो मैं वो देख रहा था, तो मेरे को था यार बड़े होकर ना इनके जैसे कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि लोगों के बीच में जाकर इतना इंगेजिंग, जैसे ज़्यादातर टीचर्स होते बहुत बोरिंग होते हैं, आप आए ना एक वो डिफरेंस, एक डिफरेंट चीज फील होती है।
लगा ऐसे कि यार नहीं अब तो टीचर्स को बाहर जाना चाहिए।
एग्जैक्टली,
उनसे बाहर निकलो।
अब बड़े भाई आ गए, इनसे बातें करनी होगी।
नहीं यार मेरे को भी अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना। हालांकि मैं जब MyFM में था पहले, तो तब मैं बहुत निकला हूँ, मतलब सड़कों पे भी निकला हूँ एज एन आरचे, लोगों से मिला हूँ, इवेंट्स में गया हूँ है ना। तो एक तो वो पहली जॉब थी, तो एक्सपोजर लेने का बहुत ज़्यादा ही कीड़ा था है ना। पर जब MyFM में रह के वो कीड़ा पूरा हो गया, तब लग रहा है कि ज़्यादा हो गया। अब लोग अब ये होता है कि एक्सपोजर जो है वो ज़रूरी है, लेकिन जहाँ से लेना चाहिए वहाँ से मिले तो मज़ा है। हर जगह से एक्सपोजर ना कहीं पर ही आपको तंग भी करता है मेंटली, मुझे ऐसा भी लगता है। तो इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के कोई ना कोई चीज़ अगर ऑब्जर्व, वैसे तो ऑब्जर्व ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमारा काम ही वही है ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व हो जाना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जितने लोगों से मिलो अच्छी बात है, पर नेगेटिव लोगों से मिलो तो भाई एक्सपोजर बंद कर दो।
वो वाले एक्सपोजर
बंद कर दो, होनी चाहिए।
रेडलिंग मेरे को आज एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है।
थैंक यू सो मच।
मैंने पहले नहीं आपको इसलिए स्टोरी बताई, मैं कहता अभी बताऊंगा। तो उस टाइम पे लाइक आई कांट रियली बिलीव, तो मैंने उस टाइम ना सोचा भी था मुझे एक दिन ना इनके साथ बैठ कर ना बातें करनी है, और आज एक्चुअली ट्रू हो रहा है।
क्या
तो दैट इज सो ग्रेट।
थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।
अब अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे आरजे बने?
यार जर्नी मेरी ना, मतलब मेरा प्रोफेशनल स्ट्रगल तो बहुत कम रहा है, सच बोलूंगा मेरा पर्सनल स्ट्रगल रहा है थोड़ा। लाइक मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं मतलब इस फील्ड में प्रॉपरली एज अ यू नो एम्प्लॉय और एज अ प्रोफेशन चूज़ करूँ एंटरटेनमेंट फील्ड को, क्योंकि उन्हें ये जगह सिक्योर नहीं लगती थी. हर हर पेरेंट को होता कहीं ना कहीं यार मेरा बच्चा सिक्योर हो. मतलब जाकिर भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे कामयाब ना हो, माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते. तो वो बात सच है, वो गरीब नहीं देखना चाहते कि मेरे बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर हों, है ना. तो वो चीज़ थी, तो उसी के कारण घर वालों को थोड़ा मनाने में कोशिश लगी. डेढ़ दो महीने के लिए घर छोड़ा, है ना. मैं कॉलेज में सोता होता था, मेरे को अभी तक याद है, मैं लालपुर खालसा कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे ऐसा होता था, नॉट एग्जैक्टली घर छोड़ा बट मैं घर कम जाना स्टार्ट कर दिया था. डेढ़ दो महीने ऐसा हुआ, सिर्फ घर जाना, सुबह आधे घंटे के लिए जाना और वापस आ जाना.
अच्छा.
और रात को भी स्टाफ रूम में ऊपर स्टाफ रूम के टेबल के ऊपर दरी डाल के वहाँ सो जाना, या अपने बेसमेंट जहाँ थिएटर की रिहर्सल होती थी. अच्छा. वहाँ सो जाता था, है ना. सुबह आना 5 बजे, अब पता था 6:30 टीचर आने स्टार्ट हो जाते हैं, 5 बजे का अलार्म लगा के उठना, कॉलेज की बाथरूम में नहा लूँ के चलो बेसमेंट में, 9 बजे तक सो जाना, फिर 9:30 हमारी थिएटर रिहर्सल स्टार्ट होती थी. तो ऐसे है ना. तो उसके बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई जलंधर में माय एफएम में. तो वहाँ पे जब इंटर्नशिप की कंप्लीट हो गया, तो देन मेरे जो वहाँ पे बॉस थे भवनीत कौशल, ही इज़ इन ABP राइट नाउ, तो उन्होंने मेरे को एक ना बड़ी बात बोली. उनके सामने बड़ा चिल माहौल था. तो ऐसे बॉस भाई, हर कोई ऐसा चिल बॉस बने, जो जो भी देख रहा है सुन रहा है, चिल बॉस बनो. कभी भी आपके एम्प्लॉय को ये ना लगे कि यार इसके साथ मैं कोई बात नहीं कर सकता, ये झूठ बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है. और भवनीत सर इज़ वन ऑफ दोस्त जिनके साथ मैं खुल के हर बात की है, ठीक है. तो उन्होंने मेरे को सीधी बात बोली, देख तेरी शक्ल ठीक ठाक है, आवाज़ में थोड़ा बहुत दम है, उस पर खेल ले, कुछ कर लेगा लाइफ में. तो इंटरव्यू दिया एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं सेलेक्ट हो गया अमृतसर के लिए. तो बस वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई है. तो घर वाले भी मान गए, फिर घर वालों को लगा था नहीं है, कुछ तो है बच्चा, पैसे तो कमा रहा है पंजाबी में, पैसे तो कमा रहा है मुंडा, कोई गल नहीं बेटा कर जो कर रहा है. फिर विद टाइम मैंने अपने पेरेंट्स में बहुत बड़ा चेंज देखा. मतलब मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना चेंज हुए हैं, शायद मैं उतना नहीं अपने माँ बाप के लिए चेंज हो सकता. मैं ये ट्रांसपेरेंटली ये बात बोलूँगा कि बच्चों में इतना दम एक टाइम के बाद आता है. अभी मेरा शायद वो टाइम नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए उस हद तक चेंज हो जाऊं जितना वो मेरे लिए हो रहे हैं और हुए हैं. भाई मेरे पेरेंट्स एक टाइम पे ऐसे थे कि छोटी छोटी चीज़ पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन होती थी.
हाँ.
अब ऐसा है कि शरेआम ही है हर चीज़, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है. पार्टीज़ को लेके या मतलब हर चीज़ को लेके, यार पार्टीज तो बहुत नॉर्मल चीज़ें रहती हैं, है ना. मतलब हर चीज़ को लेके, कुछ नया करना है, जॉब छोड़ने का मन है, क्या प्रॉब्लम आ रही है बता, ये वो, तो हर चीज़ में लेके वो कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने इतना ढाल लिया है कि नहीं यार, कि हमारा टाइम अलग था, आपका टाइम अलग है, थोड़ा रिस्क लेना भी ज़रूरी है. तो हमारी सोच बन गई है कि थोड़ा रिस्क लो, गो विद द फ्लो. एंड मैं तो बचपन से राई गो विद द फ्लो, क्योंकि मेरे को यही नहीं पता था मैंने प्लस टू के बाद क्या करना है.
अच्छा.
मैं एडमिशन लेने गया हूँ, मेरे मम्मी पापा बैठे हैं और टीचर मेरे से पूछ रहे हैं कि ओके बेटा, मेरे को मैं नाम नहीं लूँगा मैम का, उनको बोलने का स्टाइल ऐसा था, सर आप किस में एडमिशन लेना चाहोगे, क्या सोचा है आपने. एंड मैंने कहा मैम BSc. उसने रिपोर्ट कार्ड देखा मेरा प्लस टू का, ओ यू गॉट 52%, BSc कर लोगे. मेरा दिल लगा जूते. फिर मैंने जब पूरा पढ़ा कि इसमें मैथ्स भी होती है, फिर मैंने घर वालों को बोला था नहीं होनी मेरे से. मतलब मेरे हाथ मेरे पास था देगा. सो देन आई ऑप्टेड BCom.
Okay.
ना, तो मतलब वहाँ से मतलब जर्नी मेरी बड़ी अच्छी रही है अब तक की. बहुत कमाल की रही है. तो ऐसे भी घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया, अब तक भी कर रहे हैं हर चीज़ में, फाइनेंशियली भी कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हम भी कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं. तो वही कहते हैं ना, जितने माँ बाप कर लेते उतना बच्चे नहीं कर पाते यार. ये सच है, ये जो मर्जी कर ले, माँ बाप हमें गाला काट ले, साढ़े लिए कुछ नहीं करता. वो सच है कि जितना वो कर रहे हैं उतना हम अभी शायद नहीं कर पाएंगे.
ओके, तो आपके चाइल्डहुड में आप कैसे थे और ये थिएटर का कीड़ा कहाँ से लगा?
यार चाइल्डहुड में मैं बदतमीज था इंसान. वाहियात, बेशरम, बदतमीज, शरारती बच्चा.
अच्छा.
जिसको स्कूल टाइम में तीसरी चौथी में कौन सा बच्चा सस्पेंड होता है?
तीसरी चौथी क्लास,
थर्ड या फोर्थ क्लास की बात है. मैं सस्पेंड हुआ था एक दिन के लिए. मैंने किया क्या था? कुछ नहीं किया था. स्कूल के अंदर ग्राउंड में पेड़ लगा था, पेड़ पे वो था पूंडियाना छत्ता.
हाँ.
बीज का जो होता है ना, बीज नेस्ट बोलते हैं. आई माय इंग्लिश या बेबी. तो वो था, तो मैं ना दोस्तों मैं यार इसको वट्टा मारे, मतलब पत्थर मारे, दिमाग खराब हो गया. और कुछ नहीं होएगा, इधर उधर हो जाएंगी. तो पेड़ ना मतलब जो ग्राउंड था हमारा स्कूल छोटा था, मैं जो पुराने स्कूल में था बीडी पब्लिक नाम है उसका, तो बहुत साल हो गए बंद हुए, तो वो ना स्कूल बहुत छोटा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, तो उस ग्राउंड भी स्कूल के प्रॉपर मतलब अंदर के होते ना, कई स्कूल के होते ना स्कूल के गेट अलग बना होता है, ग्राउंड बाहर होता है, तो उसका अंदर ही था सारा कुछ। तो मैंने पत्थर रटा भाई साहब, पूरे स्कूल में भगदड़, सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे, मैं स्कूल छोड़ के बाहर बग्गी में बैठ गया। ठीक है, जब थोड़ा मामला शांत हुआ, पता लगा कि भाई किसने किया ये हरकत, ये भाई समीर ने किया। चलो जी टीचर आई बार, किसने बता दिया, यार दोस्त ने, कि बाद में बग्गी में बैठा है, कान से पकड़ा स्कूल के सामने, स्कूल में सारे बच्चे बाहर, कान से पकड़ के मैम नहीं मैम सॉरी मैम। ठीक है, अंदर घर वालों को बुलाया, और टीचर कह रही उसको प्लीज़ आप ले जाओ, प्लीज उसको ले जाओ, हमने नहीं रखना ये बच्चा। लिटरली ये मेरे को नाम भूल गया मैम का, सुरेंद्र मैम थे पता, ऐसे नाम था, पापा गड़े इसको ले जाओ प्लीज ले जाओ। लिटरली मैम रो के ये बात बोल रही है, और मैं बोल रहा हूँ मैम मेरे यहाँ पे भूडी ने काटा, भूडी ने काटा, काटा नहीं था, निशान पुराना था, मतलब यहाँ काटा काटा है ना। तो बड़ी मार पड़ी घर आ गए, एक एक दिन के लिए उन्होंने सस्पेंड किया था। तो मैं शुरू से शरारती ना हूँ यार घर में, मतलब घर की चीज़ें तोड़ देनी, शीशा मेरे घर में ना, शीशा एक था जैसे पुराना हो गया था, तो मेरे बुआ नहीं आए हुए थे, वो कह रहे थे शीशा पुराना हो गया था, मैंने बॉल उठाई तोड़ दी।
उसी वक्त
हम क्रिकेट खेल रहे थे घर में, मतलब हमारी घर में, घर की पुराना घर जो था वो छोटा था, तो यहाँ से लेके इतनी जगह में हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ शीशा लगा था, तो ऐसे मैंने बोल जो यहाँ डालने थे मैंने वहाँ मार दी। मैंने कहा चलो अगले दिन नया शीशा आ गया। तो मैं छोटे होते से मैं यार शरारती रहा हूँ, मतलब मेरा जो भाई है वो इंट्रोवर्ट है।
अच्छा,
पर जब वो खुल, वही है ना, इंट्रोवर्ट बंदे जो खुल जाएँ अपने सर्कल में तो वो फिर उनके लिए एक्सट्रोवर्ट है ना, तो वो इंट्रोवर्ट है पब्लिकली, तो मैं शुरू से ओवर एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ। और इस चीज़ का नुकसान भी और फायदा भी, मैं तो दोनों चीज़ें बोलूँगा, पर बचपन से ही ऐसा सेम रहूँगा।
तो थिएटर कब स्टार्ट हुआ?
थिएटर स्टार्ट हुआ यार एट्थ क्लास में, एट्थ में पहली बार
स्कूल में
एट्थ क्लास में मैं था, तो पहली बार थिएटर, ये नहीं पता, ये पता होता था थोड़ा बहुत थिएटर होता है, एक्टिंग का शौक था, पर ऐसे मतलब प्रोफेशनली या स्टेज पे कभी किया नहीं था। तो यूथ फेस्टिवल स्टार्ट हुए थे, तो ऑडिशंस चल रहे थे, ऑडिशंस के लिए जो टीचर थे आरजे हिमांशु हैं, वो इस वक्त रेडियो सिटी में है, तो वो मेरे मेंटर और मेरे गुरु थे उस वक्त, है ना, अभी मेरे बड़े भाई हैं, तो अभी उनको उनके साथ बात होती रहती है मेरी। तो वो आए थे, तो उन्होंने ऐसे ना क्लासेस में जा रहे वो ऑडिशन लेने के लिए बच्चों के, तो पूछ रहे मतलब कि कौन कोई थिएटर करना चाहता है, एक्टिंग का शौक है किसको, तो मेरी क्लास में से मुझे अभी तक याद है मैं अकेला था जिसने हाथ खड़ा किया था, और कोई बच्चा नहीं था।
अच्छा,
तो मैंने हाथ खड़ा किया, उन्होंने बाहर बुला लिया। ठीक है, उसके बाद हुए ऑडिशन, तो स्किट थी, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। जब वहाँ हमने परफॉर्म किया, हम थर्ड आए पहली बार।
अच्छा,
तो बस वो जब थिएटर किया तो पता लगा स्टेज क्या, उस एट्थ क्लास में भी मैं सही बात बताऊँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा था कि थिएटर मुझे दे क्या रहा है, तब ये था सिर्फ कि मज़ा आ रहा है तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में था मैं, क्रिकेट खेला, बेसबॉल खेला, बेसबॉल मैंने नेशनल कैंप लगाए हुए हैं, हाँ बेसबॉल का मेरे को बड़ा अभी भी शौक है, मेरे पास ग्लव्स अभी भी पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से ग्लव मंगवाया था मेरे चाचू से।
वाओ,
तो उस वक्त मुझे याद है मैं फुकरी मारता होता था, सबसे महंगा ग्लव मेरा है भाई, वो ग्लव $1200 का था, और लोग जो मेरे साथ वाले थे ना उनके साथ $1200 वाले ग्लव्स थे, तो सभी होते यार ये ग्लव तेरा अलग आया है, मैं क्या ऑस्ट्रेलिया से आया। अब तो चलो इन चीज़ों में ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही हैं, मतलब पैसा ये चीज़ें है ना, कमाना ज़रूरी है, ये नहीं मैं कहूँगा भाई कमाओ ना, मटेरियलिस्टिक है तो कमाओ ज़रूरी है, बट वो है कि हाँ इसका वो नहीं है, दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए चीज़ के, है ना। तो अब तो ये होता है कि हाँ कुछ महंगी चीज़ ले भी ली या कुछ हो गया तो ये होता है कि ग्रेटिट्यूड होता है कि शुक्र है भगवान के आपने इतने लायक बना दिया कि हम ये चीज़ ले पा रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ है। तो बस उसके बाद थिएटर का जो कीड़ा है वो आगे बढ़ता बढ़ता जब कॉलेज में आया, सेम थिंग हैपेंड, जो हिमांशु सर के गुरु थे, मतलब टीचर थे हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने क्लास में ऐसे पूछा कि ऐसे समीर नाम का एक लड़का है यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं हाँ जी आना ज़रा, तो सी सेट के तुझे याद है एट्थ में मैंने ऐसे थिएटर, मैंने कहा हाँ जी आपने ईंट मारी थी मेरे पैर में। वो टीचर है उनको गुस्सा आया था, उन्होंने ईंट उठा के ऐसे पैर में नहीं मारी, मतलब ऐसे जमीन पर मारी थी कि डराने के लिए, है ना।
अच्छा,
तो वो बड़ा बढ़िया थिएटर कराते थे, हरप्रीत मैम थे।
अच्छा,
अभी भी हैं मतलब। तो उसके बाद फिर कॉलेज में जब गए तो पहला साल नॉर्मल था हमारा माइम वगैरह की, सेकंड ईयर के बाद बूस्ट मिला, सेकंड में मैं बेस्ट एक्टर निकला दो बार यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, उसके बाद हम ओपन नेशनल गए वहाँ पे भी मैं बेस्ट एक्टर निकला, हमारा प्ले नेशनल दो बार गया, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो अभी तक थिएटर डेज आर गुड. हालांकि उस ग्रुप से मेरा नाता टूट चुका है जो थिएटर ग्रुप था उनसे नाता टूट चुका है बट वो जो टाइम था बहुत अच्छा निकला मेरा बहुत मजा आ गया.
और क्या क्या चीज़ें सिखाई आपको थिएटर में?
थिएटर ने यार थिएटर ने बहुत सारी चीज़ें सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस सिखाई है थिएटर ने जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है मैंने सीखी है थिएटर से. थिएटर आपको ना एक्सेप्ट करना सिखाता है जब आप स्टेज पे होते हो ना तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप रियल में कैसे हो. आप स्टेज पे आके फेक नहीं कर सकते. स्टेज पे एक्टिंग इज एक्टिंग. एक्टिंग को मैं फेक नहीं मानता. एक्टिंग को मैं फेक नहीं मानता ठीक है. फेक इन सेंस कि आप अपनी वो कहते हैं ना रूह से झूठ चीज़ में. अगर मैं स्टेज पे एक्ट कर रहा हूँ और मेरे मन में ये चल रहा है कि यार ये सामने वाला गलत बोल दे दीज काइंड ऑफ थिंग. मतलब उन्होंने इनसिक्योरिटी नहीं सिखाई थिएटर. थिएटर ने ना एज एन आर्टिस्ट मेरे को सिक्योरिटी बहुत दी है कि भाई जो तेरे पास है ना जो हुनर तेरे पास है वो कोई नहीं छीन सकता तेरे से. नो वन कैन. नो वन मतलब वो नहीं छीन सकता. आज पैसे कम कमा रहा है कल ज़्यादा भी कमाएगा. कल आज ज़्यादा कमा रहा है कल कम भी कमा सकता है. तो पैसा हो गया फेम काइंड ऑफ चीज़ हो गई या कुछ भी हो गया ये आता जाता रहेगा. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द एक्सेप्टेंस कि हाँ मेरे पास जो चीज़ है और मैं जैसा हूँ वो मुझे पता मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा. और वो जो ऑनेस्टी रहती है ना अपने मन में अपने साथ आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे थिएटर ने सिखाई है कि अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा
मेरा भी यही रीज़न है कि मैंने एक्टिंग ज्वाइन करी कि मुझे हमेशा मेरे लिए सेल्फ एक्सप्रेशन था. वरना बाकी मैं दुनिया के लिए आई वाज दिस इंट्रोवर्ट और शाय इंसान. तो मुझे ना ऐसा लगता था वो बैरियर कर रहे हैं मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने से. तो मेरे लाइफ में सबसे पहले डांस आया फिर एक्टिंग आई. तो जो आप चीज़ बोल रहे हो ना I'm feeling so good कि यार ये चीज़ ना मैंने भी ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस
किया. बहुत ज़रूरी है
थ्रू एक्टिंग
खुलना सिखाया थिएटर ने. सही बात है तो खुलना सिखाया
एक्सेप्ट करना. राइट वो जैसे आप जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला मैं शाय इंट्रोवर्ट था अजीब सा था बट वो जो ट्रांजिशन आया वो एक्टिंग
वो आता है वो आता है
वो इन्हीं चीज़ों की वजह से
आता है. स्टार्टिंग में जैसे मैंने थिएटर जब बचपन में होते हैं तब हम थोड़े मैं वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा
नॉन सीरियस वे से
नॉट हाँ नॉन सीरियस बेशरम था.
अच्छा
के जो चीज़ नहीं करने वाली थी ना वो भी करता था. अब मैं बेशरम हूँ पर मुझे ये पता है कि मैंने बेशर्मी में कौन सी चीज़ नहीं भी करनी. बेशर्म वो नहीं है कि जो हर चीज़ कर ले. बेशर्म वो है जिसे पता है कि कौन सी सही चीज़ मैंने बेशर्मी से करनी है. लोग इस चीज़ को ना बहुत गलत ले जाते हैं. नॉट के आर्टिस्ट बाकी लोग की बात करूँ अगर मैं तो मेरे लिए तो ये चीज़ है कि मैं अपने आप को बेशर्म बोलता हूँ बट मेरे बेशर्म बोलने का जो सेंस है वो अलग है बहुत.
अब बोलते ये सेम चीज़ जब मैं एक्टिंग स्कूल में था एक्टर प्रिपेयर्स में तो मेरे सूरज सर थे जिनका नाम था सूरज व्यास. तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी फर्स्ट डे पे. उन्होंने बोला था एक्टिंग जो एक्टर होता है ना वो रिस्पेक्टफुली बेशरम होता है. कि उसको पता है कहाँ पे बेशरम बनना है और कहाँ पे नहीं बनना. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने वही चीज़ बोल दी.
एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है.
दैट इज़ सो पावरफुल. राइट ओके थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं यहाँ से. तो अपने लव स्टोरी के बारे में बताओ.
है ही नहीं यार गरीब. लव स्टोरी अभी वाले की पुरानी. तू कलेश पुआ मेरे घर. कौन सी वाली पूछना.
कौन सी वाली बताओ
तू बता.
कौन सी वाली कौन सी बताना चाह रहे
हो. यार मतलब वैसे तो मेरे सीरियस रिलेशनशिप्स ज्यादा नहीं रहे हैं एक दो ही रहे हैं. तो राइट नाउ आई एम इन अ रिलेशनशिप मतलब प्रॉपर कमिटेड घर वालों को पता है.
सो हर
हर नेम इज यास्मिन. तो वो इसी अमृतसर शहर से ही है. तो ये चल रहा है अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया है. लड़की के आने के बाद मतलब कि इस लड़की के आने के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं. पॉजिटिव चेंजेस बहुत देखे हैं. मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब पहले पहले तो सुना था भाई सीधी सी बात. जब वो बीतती है ना खुद पे तब आपको रियलाइजेशन होती है कि पहले तो सुना था कि नहीं यार लड़की के किसी के आने से किस्मत चेंज होती है या काम में बढ़ोतरी आती है ऐसी बातें सुनी थी है ना. बट इसके यास्मिन के आने के बाद आई रियलाइज कि हाँ मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. जहाँ पे मैं फंसा भी होता हूँ भाई निकल जाता हूँ. वो ये निकलने चाहे खुद निकलो निकल जाता है. वो अलग बात है कि टिपिकल गर्लफ्रेंड जैसी नहीं है भाई.
हाँ कैसे टिपिकल कैसे?
टिपिकल गर्लफ्रेंड बाबू ने थाना थाया तेने थाया. मतलब चेप नहीं है. मैं बता रहा हूँ चेप नहीं है इनसिक्योर बिल्कुल नहीं है, जेलेसी थोड़ी सी है और वो होनी जरूरी भी है, वो बहुत जरूरी है. इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, मुझे ये लगता है जेलेसी होनी चाहिए, वो भी एक एक्सटेंड तक और वो उसमें है. मुझे लगता है ये तीन चार चीजें हैं जो मुझे लगता है कि टिपिकल गर्लफ्रेंड को डिफाइन करती है, और वो टिपिकल गर्लफ्रेंड नहीं है. शी इज अ कंपेनियन,
आपके बेस्ट फ्रेंड है.
एग्जैक्टली, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. उससे हर चीज, हर तरह की बात, चीप से लेके अच्छी से लेके जैसी मर्जी वो कर सकता हूँ. तो ऐसी दोस्ती का, ऐसे रिश्ते का मायना ज़्यादा ज़रूरी होता है.
तो फर्स्ट टाइम कैसे मिला?
हम यार इंस्टाग्राम पे ही मिले थे, उसका कोई गाना आया था, मतलब मेरे अच्छा। दो मेरा दोस्त है तो उसका, वो भी मतलब मॉडल थी उस गाने में, और वो लड़का भी मॉडल था. तो लड़का भी मेरा दोस्त था, अच्छा। ये दोस्त नहीं थी. अच्छा। तो मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे, इनको भी टैग किया, उनको भी टैग कर दिया. तो शी रिप्लाइड, तो मैंने नॉर्मली लिखा बहुत प्यारा गाना है, और मैंने वो गाना सुना ही नहीं था.
उनको पता है कि आज पता लगेगा?
नहीं, मैंने थोड़े दिन पहले, ये बात थोड़े दिन पहले ही पता लग गया, क्योंकि कहीं बैठे थे और वो गाना प्ले किया किसी ने. मैंने कहा यार कितना अच्छा गाना, क्या तुमने, कहते तुमने देखा नहीं था? रील में देखा था. तो उन्हें बोलते नहीं. उसके बाद नॉर्मली बातें स्टार्ट हुई. तो मैं शायरियाँ शायरियाँ करके ऐसे पटाने की भी कोशिश नहीं मैं बोलूँगा, बट ऑटोमेटिकली होता लड़कों में यार इंप्रेस करने वाला, है ना. को मैं नहीं मान सकता कि कोई लड़का ये बोले, मैं इस कैमरे में देख के ये बात, मैं ये बात नहीं मान सकता और मानूंगा भी नहीं, और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं कभी मानूंगा, कि लड़के जो बोलते हैं ना कि नहीं यार वी नेवर ट्राइड टू इम्प्रेस एनीवन, ये झूठ है. आप इनडायरेक्टली इम्प्रेस कर रहे होते हो और आपको नहीं पता होता. एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी. मेरा मन कर रहा था कि मैं पोइट्री भी बोलूं, बट इनडायरेक्टली वो उसे इम्प्रेस कर रही थी. तो ये लड़कों का, एक तो जब कुछ लड़कियों को देख के हिंदी ऑटोमेटिकली निकलती है, तो मैं वो लड़का हूँ. कोई गर्लफ्रेंड नहीं भी है ना मेरी, जनरली कोई किसी फ्रेंड से भी बात हो रही है तो लड़कियों को देख के मेरी हिंदी निकल आती है.
अच्छा.
मुंडियानों में के पंजाबी. तो ये चीज़ है. तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर धीरे 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 घर वालों को भी पता लगा. घर वालों ने थोड़ा नानुक्कर की पहले.
अच्छा.
कि नहीं तू पहले भी ऐसे बोलता था, सीरियस है. दो महीने बाद ब्रेकअप हो जाता. मैं कहा नहीं पक्के वाला है. नहीं ये भी तूने पिछली बार भी बोला था. मैं कहा नहीं अब ये वाला पक्का, कहते ये भी बोला था. और मैं आगा वेट कर लो थोड़ा सा, विद द टाइम देख लेना. बट विद टाइम देखा उन्होंने, ठीक है. उसके घर वाले भी ओके हैं, मेरे घर वाले भी ओके हैं. अब तो पब्लिकली शरेआम है. वही वाला गया, प्यार किया तो डरना गया.
एग्जैक्टली.
बाकी आई एम तो थैंकफुल कि मैं जितना गलत इंसान रहा हूँ और मुझे यास्मीन ने एक्सेप्ट किया एज अ पार्टनर, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. मेरे को तो ऐसा लगता है, आई फील ब्लेस्ड टू हैव हर.
तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए आपको क्या लगा, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बताया उसके अलावा? जैसे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है, आपने बोला इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए.
बाकी यार मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आप दोस्तों की तरह रहोगे ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है. इवन आफ्टर मैरिज, इवन आफ्टर हैविंग अ किड, रिलेशन माँ बाप का भी रिलेशन, मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज है. तो मैंने इतने, मैं आई एम 27 राइट नाउ, ठीक है. तो 28 साल उनकी शादी हो गई, ठीक है. तो 28 साल में जितने साल मैंने देखे, मैंने लड़ाइयाँ भी देखी हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है. लड़ाइयाँ भी देखी हैं, प्यार भी देखा है, तकरार भी देखा है, क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी देखे हैं, सब कुछ देखा है. पर वो एज अ फ्रेंड ना बैठ के सॉल्व कर दे रहे. मतलब मेरे, माय मॉम इज मोर इनटू के गल करो उससे, है ना. वो चीज़ है, एक वो कहते हैं यार एक रिलेशनशिप में ना किसी एक को एक बारी पहल करनी पड़ती है, दूसरा अपने आप ट्रिगर हो जाता है. अब मैं आपको पोक करूंगा, ठीक है, लड़ाई के लिए आप हो जाओगे. पहल मैंने कर दी. अब मैं आपको, अगर हम दोनों की लड़ाई हो गई है, तो मैं आपको अगर पोक करूंगा कि नहीं यार सॉल्व करते हैं, 10 बारी 20 बारी 50 बारी बोलूंगा, 50वीं बार 51st time तो आप बोलोगे ना चल यार कर लेते हैं. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी झुकना ज़रूर पड़ता है. झुक के रिश्ते बचाने बहुत ज़रूरी है.
मैंने ये लाइन भी कहीं पढ़ी थी कि टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप Only one person should get mad at a time. एक ही बंदे को गुस्सा हो, दूसरे को शांत.
हमारे में ये थोड़ा कम है, सॉरी. हम दोनों एक टाइम पे कभी भी नाराज हो जाते हैं, है ना. तो बहुत, ये तो बहुत बार होता है भाई, बहुत बार होता है.
बट मना भी लेते
हैं. पर मना भी लेते हैं, और मना भी ऐसे लेते हैं कि कोई बाय डेस्टिनी, पता क्या होता है कि अगर हम दोनों नाराज है ना, मैं कहता हूँ मैं भी नहीं बुलाना यार, उसकी ईगो तो मेरी भी तो है, आज मेरी बारी, वो वाला सीन. मैं बहुत कम नाराज होता हूँ. आई एम द लीस्ट लड़ने वाला इंसान, लीस्ट मैं जिंदगी में बहुत रेयर है कि मैं किसी से लड़ाऊंगा प्रॉपर. पापा से तो जो लड़ता ही रहता हूँ. पापा के साथ प्यार सबसे ज्यादा है, मम्मी के साथ भी है. तो पर लड़ा मैं पापा के साथ सबसे ज्यादा हूँ, है ना. तो मतलब मेरा और यास्मिन का ऐसा है कि हम दोनों नाराज है ना, डेस्टिनी ने पूरे दिन में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देनी है कि या उसको मेरे से कोई काम पड़ जाना या मुझे उससे कोई काम पड़ जाना, और एक दूसरे को मैसेज या कॉल करना पड़ ही जाएगा. तो जब वो बात होती है तो उसमें भूल ही जाते कि लड़ाई हुई थी. तो ये है, हम दोनों तो भाई एक टाइम पे नाराज हो जाते हैं. मतलब तुम अपना देख लो तुम्हारा कैसे है. तुम कलेश मत डलवाना ना, तुम नाम नूम लेना, हमारा तो चल जाता है.
बहुत सही. ओके, शादी का क्या प्लान है आपका?
मेरा अभी कोई प्लान नहीं. मुझसे ऐसा सवाल ना किए जाए. शादी का यार अभी कोई प्लान नहीं है एज सच. अभी तो करियर पे फोकस कर रहे हैं. प्लान है जरूर है, बट नॉट एनी टाइम सून. तो और प्लान्स अभी फिलहाल शादी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान्स अभी चल रहे हैं जो मैं बता नहीं पाऊंगा. ठीक है, पर यू गाइस विल गेट टू नो इस पॉडकास्ट के बाद ही आएगा. ये तो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा. अगले साल. अगले साल दिवाली पे डालेंगे और दशहरे का गिफ्ट देंगे आपको. ठीक है, हाँ मतलब कि उसके बाद ही. तो आई विल लेट यू नो कि क्या प्लान था. तो उधर ज़्यादा फोकस है, तो अभी साथ में रिलेशन को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ. तो मैं भी चाहता हूँ, यास्मिन भी चाहती है, फैमिलीज भी चाहती है, थोड़ा टाइम और चाहिए. तो करेंगे करेंगे, कोई ना, बेड़ा गर्क तो कराना है. करा लेंगे, थोड़ा आराम से करा लेंगे.
सही है. ओके, तो आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? कुछ
आगे बस इसके बाद ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाकर रोटी खाऊंगा, भूख लगी है फिर शो करूंगा.
लाइक एक करियर वाइज, आप
करियर वाइज मैं सच्ची बताऊं, मेरे कोई प्लान्स नहीं है. मेरे शुरू से लेके अब तक कोई प्लान्स नहीं रहे हैं. और इस बात को सीरियस भी मत लेना, लेकिन मजाक में भी मत लेना. जो लोग सुन रहे हैं, है ना, अगर कई लोग पता क्या बोल देते हैं कि नहीं यार हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है. तो ऑब्वियसली सेम नहीं होती है. मेरी गो विद द फ्लो के साथ चली है और बहुत अच्छी चली है. हर किसी की नहीं, किसी की प्लान्स के साथ चलती है. है ना, ये नहीं मैं कहता कि मैं बिल्कुल प्लान्स नहीं करता, मैं प्लानिंग करता हूँ. हाँ। पर मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ नहीं यार मैं प्लान नहीं कर सकता कुछ चीज़, अब मैं अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. प्लान कर सकता हूँ. अब लोगों ने कोरोना के टाइम की बात लेता, सबसे बड़ी एग्जांपल है. मैं एक कंपनी है, नाम ले लूंगा ट्रेल, उसमें इंटरव्यू दे रहा था जॉब के लिए. ठीक है, और उस लैंग्वेज के लिए जिससे मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इंग्लिश. ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आई वॉज गेटिंग हायर्ड. तो HR ने ना एक सवाल पूछा जो कि वाहियात सवाल लगता है पूरी दुनिया के HR. ये क्यों पूछते हो कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? सेंस है इस बात में भी, इस सवाल में भी सेंस है? मेरे को बताओ, अकल है तुम्हारे दिमाग में भी? मतलब भाई जो बंदा 2015 में था, प्लान कर रहा था 5 साल बाद मैं गाड़ी लूंगा, 2020 में वो साइकिल पे आया है. एंड वी हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स. कोरोना के टाइम में लोगों ने क्या, कहाँ गई वो प्लानिंग्स, मेरे को ये बता दो. मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, पर वो प्लानिंग से इतनी करो कि अगर वो ना भी पूरी हो तो तुम्हारा दिल ना टूटे. वही कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स, है ना. तो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं. अब मैं ये सोचूं कि यार मैं, फॉर एग्जांपल, मैं ये सोच के आया होता इस इंटरव्यू में कि यार मेरे को ना, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इतना तामझाम मिलेगा, ऐसा होगा, ये ट्रीटमेंट होगा, वो होगा, मैं आऊँगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं आया हूँ यार, दो लोग हैं, उन्होंने ही बुलाया फिर. ये एक्सपेक्ट करके अगर मैं आया होता, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मेरा इंटरव्यू करने का जरिया ही तो बदल जाता शायद. बट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मैं कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करता. मैं ठीक है यार, जाएंगे, मजे करेंगे, एक हो, दो लोग हो, तीन लोग हो, हम जिस काम के लिए बुलाए हम वो अच्छे से करेंगे. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्लानिंग वाला सीन है, प्लान में कुछ नहीं किया हुआ. फिलहाल आई एम वर्किंग विद रेड एफ एम, और बहुत बढ़िया ब्रांड है यार, माय से बेटर है, मुँह पे बोल रहा हूँ. ठीक है, रेड एफ एम इज़ अ ग्रेट ब्रांड. आई एम रियली हैप्पी कि मैं रेड एफ एम के साथ काम कर रहा हूँ. और इसके बाद प्लान्स हैं भी और नहीं भी, मतलब गो विद द फ्लो है यार मेरा. जो मिल गया मैं निकल भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये हर किसी का होता है यार. मैं अकेला नहीं हूँ. अगर फॉर एग्जाम्पल लोग डर जाते हैं कि नहीं यार हम पब्लिकली नहीं बताएंगे कि हमारे कोई प्लान्स हैं या नहीं हैं, हम जॉब छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना. इट्स नॉट लाइक जॉब छोड़ना चाहते हैं, बट किसी को भी अच्छा ऑप्शन दिखेगा, क्यों नहीं जाएगा यार वो इंसान. आफ्टर ऑल पैसा तो इंपॉर्टेंट है, और कंपनी लॉयल नहीं होती आपके साथ, मैं मुंह पे बोलता हूँ.
अच्छा,
तो आप भी इतने लॉयल मत हो कंपनी के साथ. कंपनी तब तक आपका साथ देती है जब तक आप कंपनी में हो. जब आपने प्लान कर लिया कि यू आर गोइंग आउट, तो कंपनी नहीं आपका साथ देती है, प्रॉपरली नहीं देती है. बट ये सच है, मैंने जो देखा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेड एफ एम, क्योंकि रेड एफ एम ने तो सपोर्ट किया जितना पिछली कंपनीज ने नहीं किया. हाँ, बाइट डांस में मैंने काम किया. बाइट डांस वाज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज.
कैसा कल्चर था वहाँ पे?
बहुत कमाल का यार. नो पॉलिटिक्स, जीरो पॉलिटिक्स, जीरो पॉलिटिक्स. और आपने जो काम किया उसकी अप्रिसिएशन प्रॉपर मिलेगी आपको, ऑफिशियल मिलेगी. एंड इफ यू आर नॉट अचीविंग योर टारगेट्स दे विल हैव अ कॉन कॉल विद यू पर्सनली, नॉट इन योर टीम मेट्स के ये क्यों नहीं कर रहे हो, हम पागल हैं यहाँ काम कर रहे हैं. वो कहेंगे आपको 2 महीने और चाहिए, यू वॉन्ट ट्रेनिंग ऑन दिस, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, वी आर हेयर टू वर्क आउट. वो निकालते नहीं थे. यहाँ पे धमकियाँ मिल जाती हैं आपको, वो कहते हैं पाइपलाइन में डाल रहे हैं जी, काहे को टारगेट 1 महीने नहीं पूरा हुआ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं.
यहाँ पे लोग ये नहीं समझते कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी वजह से तो काम कर रहे
हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार, वो बहुत ज़रूरी है. तो मेरे मतलब कि 2 कंपनीज के साथ बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, और रेड के साथ मेरा अच्छा रहा है, चल रहा है रेड के साथ, तो अभी भी चल रहा है. रेड के साथ मेरे को सबसे बड़ा सपोर्ट ये रहा है, जो मेरी बॉस है शिवानी मैम है, तो बहुत सही है यार, वो बहुत सॉर्टेड है. मेरे को बड़ा देर से था कि बॉस ढंग की कोई मिल जाए, मेरे को ढंग का बॉस मिल जाए. फिर रेड एफ एम में आगे वो सुनी है मैंने, ये मेरी ढंग की बॉस मिले हैं मेरे को, बॉस नहीं मैं लीडर ही बोलूँगा, मज़ा आता है काम करके. वो अंडरस्टैंड करते हैं कि सिचुएशन, पर्सनल चीज़ें भी हो जाती हैं, पर्सनल चीज़ों की वजह से कभी कभी प्रोफेशनल चीज़ों में प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो उसको इतना हवा नहीं बनाना. आगे तो ठीक है, इंसान है भाई, आ सकती है, तो अंडरस्टैंड तो काम करके अच्छा लगता है.
तो जैसे आपने बोला बॉस और लीडर, क्या फ़र्क है?
बॉस ईगोइस्टिक होते हैं, लीडर ईगोइस्टिक नहीं होते हैं. इससे ज़्यादा एग्जाम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. मुझे जो
ये बोल सकते हैं बॉस ईगोइस्टिक होते हैं और
जो लीडर है
वो कोलैबोरेटिव
होते हैं. हाँ, ये वर्ड इंग्लिश आईएलटीएस पूरी कराएगा आज मेरी ये
राइट. अच्छा, एक जब हम पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बोली, जो मुझे ये लगा कि आप ये नहीं चाहते कि आपको ना कोई एक टाइटल दिया जाए. आप ये नहीं चाहते कि जैसे मैं उस पर जब नाम लिख रहे थे तो आपने कहा था आरजे मत लिखो, वो मेरा प्रोफेशन है. मैं एक वो बॉक्स में नहीं रहना चाहता.
एग्जैक्टली.
तो उसके पीछे क्या आपकी रीजनिंग?
यार रीजनिंग यही है, क्योंकि पर्सनल भी गई, घर भी जैसे बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आरजे हूँ, मेरा आरजे प्रोफेशन है, मेरी आर्ट आरजे नहीं ना है. मेरी आर्ट सिर्फ रेडियो जॉकी तक नहीं ना है. मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक एक्टर भी हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ. नॉर्मल मूवीज वगैरह वाला साहब, मैं नॉर्मल जैसे स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, पोएट्री कर, मैं पोएट भी हूँ, मुझे शायरी आती है. तो मैं आरजे कैसे लगा लूँ? हाँ, मेरा प्रोफेशन है जब मैं जॉब कर रहा हूँ, जब मैं वो जॉब कर रहा हूँ, जब मैं ऑफिस में हूँ, अपने क्यूबिकल में हूँ, देन कोई आके मेरे को बोलेगा हाय आरजे समीर से बात करनी है, देन आई विल मतलब कि हाँ ठीक है. अब मेरे साथ 3-4 लोग पब्लिकली भी कोई बोल देगा आरजे है, तो वो वहाँ पे भी मैं क्या ही उनको, अगर इतने लोग हैं तो उनको ना अकेले अकेले को नहीं समझा सकता मुझे आरजे मत बोलो. मुझे बुरा नहीं लगता है कि मुझे कोई आरजे बोलता है, मोनोटोनस सा लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी किसी आरजे के फ़ैन हो, या किसी वीजे के फ़ैन हो, या एक पर्टिकुलर आर्ट में है बंदा उसके फ़ैन हो, तो उसे उसकी आर्ट से पहचानो, उसके प्रोफेशन से ना पहचानो. मैं तो ये चाहता हूँ. हालांकि मुझे पहचान रेडियो ने दिया, और रेडियो ने मेरे को जितना दिया, आई डोंट थिंक सो के कोई चीज़ दे पाएगी. मैं 4 साल हो गए मुझे रेडियो में. कमाल का एक्सपीरियंस है यार, बहुत कमाल का, नेक्स्ट लेवल.
आप अपनी इंस्टा आईडी पे भी आरजे नहीं लिखते? हाँ, आपने द समीर ओबेरॉय.
हाँ, द समीर ओबेरॉय लिखा हुआ. तो वो मेरे को लगता है कि मैं समीर ओबेरॉय हूँ, तो जिसको पता है समीर ओबेरॉय कौन है, तो उसको पता है आरजे है वो. तो मुझे आरजे कहने की जरूरत नहीं है. हाँ, जिसको नहीं पता तो वो बुला सकता है. ये नहीं मैं कहूँगा कि नहीं बुलाओ यार आरजे, बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, बट मेरे को मोनोटोनस लगता है. मैं मना नहीं करता. मैंने तेरे को इसलिए मना किया, मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा यार समीर ओबेरॉय बोलते हैं.
मेरे को बहुत अच्छा लगा कि
है ना, तो वो है, मोनोटोनस हो जाता है. हालांकि मेरा काम ही है, मैं तो रोटी उसी से खा रहे हैं, बुरा तो क्या ही लगना है. ये होता है कि मोनोटोनस होता है, तो ये है कि क्यूबिकल में नहीं होना चाहिए.
मतलब वो आपको एक टाइटल ना मिले.
टाइटल ना मिले, यस. मुझे समीर रहना है, समीर ओबेरॉय, दैट्स इट. समीर ओबेरॉय रहना. समीर ओबेरॉय क्या आर्टिस्ट है.
हां, समीर ओबेरॉय जो बहुत सारी अलग अलग चीजें करता
है, आर्टिस्ट है वो. उससे ये उसको ये भी कर लेता, वो ये भी कर लेता, वो ये भी कर लेता, ऐसा. ये वाला सीन.
कुछ कोई पोएट्री सुना दो अच्छी सी.
यार एक पोएट्री जो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ कि वो दिल में रख के जहन से बाहर कर देता है.
वो
दिल में रख के जहन से बाहर कर देता है, रिश्ते तो इतने निभाता है कि खास को भी आम कर देता है, कि भूल कर भी इश्क ना कर लेना समीर से मेरी जान. वो झूठ बोल देता है और उसी झूठ पे घंटों बात कर लेता है.
ओह वाओ.
तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है. मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, नॉट ऑलवेज बट कभी कभी.
आज भी झूठ बोला आपने?
नहीं, आज अभी तक तो नहीं बोला यार. क्या फायदा हो जाएगा? कोई चक्कर नहीं, लोगों को पता लगना चाहिए कि हाँ यार रियल में कैसे हैं. ठीक है, दो लोगों को नहीं भी पसंद आएगा तो कोई चक्कर नहीं.
आपकी रियल साइड.
आई एम नॉट अ शनेल बैग ना, हर किसी को थोड़ी पसंद आएगा. नहीं भी आता तो कोई चक्कर नहीं है.
वाह, बहुत सही है. एंड मुझे ये बताओ, जब आपने अपने आरजे की जर्नी स्टार्ट करी, तो जो लोग आरजे बनना चाहते हैं वो कैसे अपना रेज्यूमे दे, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड वर्क ऑन?
यार मैं सच्ची बताऊं तो इसके लिए स्टडी, अगर लोगों को लगता है कि स्टडी मास कॉम करनी जरूरी है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने एमबीए किया और वो भी फाइनेंस और मार्केटिंग की।
अच्छा,
ठीक है। और उससे पहले मैंने बीकॉम की, तो मेरा रेडियो की स्टडी से लेके कोई वो नहीं है, लिंक नहीं है। मास कम्युनिकेशन कर सके आप, थोड़ा और ईजी हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाती है, तो वो चीज़ है। तो बेसिक जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको स्पॉन्टेनियस होना बहुत, आपको कंटेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, कैसा कंटेंट हम कहाँ ले सकते हैं, और क्या कहते हैं अपडेटेड थोड़ा होना चाहिए,
ट्रेंड क्या चल रहा है,
ट्रेंड क्या चल रहा है,
जैसे आजकल वो ऑब्सेस्ड गाना चल रहा है, विकी
हाँ जब वो चल रहा है,
तो उसके बारे में बात कर रही
है ना, तो वो चल रहा है। तो आई थिंक स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है बींग एन आरसी, यू हैव टू बी वोकल अबाउट थिंग्स। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आपकी आवाज़ है उससे खेल रहे हो आप, है ना। आप चाहे इंस्टाग्राम पे हो, इंस्टाग्राम वगैरह चलो, अब बाय रेडियो तो कब से चल रहा है, तो आपकी आवाज़ इतनी पावरफुल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपकी पावर में, आपकी आवाज़ में इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए, इतनी इतना ट्रुथ लोगों को सुन के ही नज़र आ जाना चाहिए कि यार ये बोल रहा है ये सही बोल रहा होगा। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं, और रेज्यूमे वाली बात किया तो वो तो आपके जो शहर में रेडियो स्टेशन है आप वहाँ डायरेक्टली जाकर भी बात कर सकते हो
कि अच्छा मैं,
हाँ बिल्कुल वो कर सकते हो, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो कि हाँ ऐसे हम करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, तो वो वहाँ पर भी जो भी रिस्पेक्टिव इंसान होगा तो वो आपको बताएंगे, प्रॉपर प्रोसीजर बताएंगे, क्योंकि हर रेडियो का थोड़ा अलग सीन होता है। तो उस हिसाब
से ऐसे ऑडिशंस वगैरह भी होते हैं, कुछ
ऑडिशंस भी होते हैं बिल्कुल, आपके आपके वॉइस चेक की जाती है, आपको कंटेंट नॉलेज चेक किया जाता है, आपको
कंटेंट नॉलेज कैसे,
कंटेंट नॉलेज के आपको फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यूज़ दे दिया कि ये न्यूज़ है, आज विकी कौशल ने कैटरीना को ये बात बोली, तो ये तो न्यूज़ है कि वन लाइनर खत्म है। अब वन लाइनर को आपने 30-40 सेकंड कैसे खींचना है एज अ कंटेंट,
अच्छा
तो वो होगा उसके साथ मैं क्या रिलेट कर सकूँगा। जैसे कल एक न्यूज़ थी क्या, कैटरीना हर हफ्ते, विकी कौशल ने बताया कि कैटरीना हर हफ्ते बजट मीटिंग बिठाती है स्टाफ के साथ और मैं पॉपकॉर्न लेके बैठता हूँ क्योंकि मेरे को बड़ा मजा आता है। मैंने कहा यार वाइफ कैटरीना हो चाहे मेरी मम्मी हो, बजट तो बनता है भाई, और आप पति हो जो मर्जी हो, बोल आप भी नहीं सकते कुछ। तो ये 30-40 सेकंड में मेरा टेक भी आ गया, लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच गई। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी चीज़ें नहीं कोई चाहिए जो लोगों को लगता है यार आरजे बनने के लिए, कहते ना छोटी छोटे कण कण से सागर बनता है, तो वो वाला ही सीन ही है, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना तो बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती
है। ये कहते हैं ना जो बंदा छोटी चीज़ें अच्छी तरह कर लेता है ना, बड़ी तो वो कर ही लेता
है। हाँ बिल्कुल,
और जो बड़ी नहीं कर पा रहा वो छोटी नहीं,
छोटी है छोटी से कर, बस बस वैसे ही कोई सीन है।
ओके, एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कि जो लोग मेरे जैसे थे पहले, जैसे मैं पहले था इंट्रोवर्ट, उन लोगों को कैसे वो कॉन्फिडेंस मिले कि यार वो पब्लिक स्पीकिंग करें, क्योंकि आप बोलोगे ना इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या जिनको मैं जानता हूँ जो इसलिए पीछे रह जाते हैं चीज़ों में क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग उन्हें मिसगाइड करेंगे और मिसजज करेंगे, क्या वो बोल भी पाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें।
यार मैं इस चीज़ से प्रॉपरली, मैं प्रॉपर नॉलेज तो इस चीज़ की शायद मैं ना बता पाऊँ कोई आइडिया, उसका रीज़न ये है कि मैं शुरू से एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ।
अच्छा,
ठीक है, मे भी उसी में से एक कण निकाल लिया कि मैंने कभी ना किसी की आंख की शर्म ज़्यादा नहीं की है कोई काम करने में, कि हम मुझे इंट्रोवर्ट हम तब होते हैं जब हमें डर होता है कि कोई हमारे इमोशंस का गलत इस्तेमाल ना कर ले, हमारी बात को किसी और तरीके से जज ना कर ले, है ना, ये चीज़ें होती हैं जो इंट्रोवर्ट्स में ज़्यादा होती हैं, या एक बंदे की नेचर ये होती है कि मैंने कम बोलना है ना, कम बोलने वालों को मैं इंट्रोवर्ट्स में नहीं मानता, वो ये मानता हूँ कि वो थोड़े ऑब्जर्व वाली ऑब्जर्वेशन वाली ऑब्जर्वेटिव नेचर के होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ। हाँ अगर कोई है ऐसा और वो खुलना चाहता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक ऐसे दोस्त दो तीन होने चाहिए उस इंसान के, अगर दोस्त नहीं भी हैं तो अपने मॉम डैड के साथ इतनी खुल के बात करो कि आप जब किसी और से बात करो ना तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा या गलत तो नहीं बोल दूंगा। मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी है ना दो तीन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा खुल के बात कर लो बिना डरे कि यार कुछ गलत ना हो जाए इमोशनली, या वो डर एक टाइम के लिए थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार डर को अगर मारना तो डर को बाहर निकाल के देखना होगा ना कि ये है,
हाँ,
है ना, अब मेरे यहाँ दर्द हो रही है, ठीक है यहाँ मेरे दर्द हो रही है, तो मेरे को जब तक पता ही नहीं लगेगा कि दर्द क्यों हो रही है तो वो दर्द ठीक कैसे होगी।
हाँ,
तो सेम गोज विद द इंट्रोवर्ट पीपल, वो इंट्रोवर्ट उनको क्या चीज़ पिंच कर रही है कि मैं बाहर जाके बात नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं कर रहा इससे बात करने का, मन कर भी रहा है पर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वह डर क्यों है वो जब तक उसे नहीं पता लगेगा, और वो मैं नहीं बता सकता।
वो रूट कॉज खुद
ढूंढना पड़ेगा, वो खुद ढूंढनी पड़ेगी तुम्हें। अब हर चीज आप किसी से इंस्पायर होके या किसी की बात सुन के नहीं कर सकते, कुछ चीजें आपको अंदर से जरूरी।
जैसे आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो लोग ये सुन रहे होंगे उनको इम्पैक्ट कर सकते हो, बट एट द एंड जो एक्शन है तो उन्हें नहीं लेना है, उन्हें अगर निकलना है बाहर तो वो खुद ही करना पड़ेगा।
एग्जैक्टली
राइट। ओके, तो आपकी जो इतनी अमेजिंग सी स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं, ये कैसे बिल्ड करी आपने?
ये अपने आप ही जिंदगी सिखा देती है। नहीं यार, लाइफ मेरे को तो ऐसा लगता है लाइफ जर्नी है बहुत। मैंने एक चीज़ लिखी थी एक लाइन के, कि एक सच है जो लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं, कि ये सफ़र तो मौत का है, ज़िंदगी से तो बस गुजर कर जाना है। तो ये चीज़ बस मन में रहती है ऑलवेज मेरे, कि लाइफ इज़ अ जर्नी टू डेथ, ठीक है, एंड सारे ने जाना है। तो इतना सोचना क्या है, और स्टोरी टेलिंग की अगर आपने एग्जैक्ट जो पूछा है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है यार। मैंने सीखी नहीं है ये चीज़, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है बताने का, क्योंकि विजुअल्स माइंड में चल रहे होते हैं कि अच्छा तब ये हुआ, तो फिर कहता अच्छा यार ये हुआ है।
जब आप बताते भी हो ना, हाँ, तो सारे विजुअल्स बंदे के दिमाग में चल रहे
होते मेरे, क्योंकि अपने बन रहे होते हैं,
क्योंकि अपने बन रहे
अपने दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वही चीज़ है।
तो वैसे कैसे लगा आपको पॉडकास्ट?
मेरे को बहुत अच्छा लगा,
मजा आया।
मैं बहुत टाइम के बाद कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट किया है, क्योंकि बीच में बिल्कुल रुक ही गया था, क्योंकि एक साल बिल्कुल दूर रहा हूँ, कोरोना आ गया, दो साल तो वैसे ही बाहर बूर निकले कम है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, ऐसी वाइब बनी रहे, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बुलाओ, लोगों को इंस्पायर करो, इंस्पायर करो ना करो, इंटरव्यू तो करो। सो नहीं यार, आई रियली फेल्ट गुड, मजा आया मेरे को।
लाइक आपकी वो जो इनर चाइल्ड वाली चीज है ना, लाइक मुझे ऐसे लगता है, और मेरे बहुत सारे टीचर्स ने ये बात बोली है, एक अच्छा कलाकार वही है जो अपने इनर चाइल्ड को ना दबा कर नहीं रखता।
ना रखना ही नहीं चाहिए।
हाँ, रखना। जैसे आपने वो शायरी बोली इतनी प्यारी सी, बहुत बहुत लाइक इम्पैक्ट करेगी जो भी लोग सुनेंगे ना। मुझे खुद भी बहुत मजा आया आपको इंटरव्यू करके, पॉडकास्ट करके, मैं इंटरव्यू क्यों बोल रहा हूँ बाद में, तो लाइक वो भाइयों वाली फीलिंग आ रही है कि एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है।
बस अपनी जायदाद में नाम कर दिया और भाई बोल दिया, स्टूडियो नाम कर दे, मैं बेच दूंगा इसको।
आप ही का स्टूडियो, आप जब मर्जी आओ।
क्या बात है। नहीं यार, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा मेरे को तो, बहुत मजा आया।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया।
सेम हियर।
एंड थैंक यू एवरीवन, तो ये था हमारा पॉडकास्ट द समीर ओबेरॉय के साथ, एंड वी हैड सो मच फन, एंड ऐसे ही कर लो
ये वाला शॉर्ट।
राइट, सो दिस वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।